समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग श्रोताओं, स्वागत है आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा।
नमस्कार जया, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लिसनर्स विद मी शगुन चोपड़ा एंड जया। वेल, एज शी वाज टेलिंग यू, वील शेयर द नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज विद यू इनिशियली, देन इन द सेकंड सेगमेंट वी हैव मेट्रो सिटी अपडेट्स फॉर यू एंड द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडे। एंड टुडे इट्स 9th of September, सो लिसनर्स, have you paid attention to today's date yet? Well, it's not a mystery. It is September 9th, which means 9/9/2025, and the year 2025, it adds up as 2 + 0 + 2 + 5, it equals 9. So this gives us 999. The next time we'll see a full 999, triple 9 alignment in a date like this, it will be in the year 2097 now.
Bilkul shagun.
So it's really nice to note it that today it's 9th of September, which is in full alignment, like the triple 9 alignment. So with that, let's begin with the headlines first.
हाँ, लेकिन इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में हमारे पास उनके लिए बहुत कुछ है, बने रहे अंत तक।
Well, rightly said, Jaya. First, we are beginning with the headlines. The election of the post of Vice President will be held today. NDA nominee and Maharashtra Governor C.P. Radhakrishnan will face India Bloc's nominee and former Supreme Court Judge B. Sudarshan Reddy in this election. We have a report.
The Vice President is elected by an electoral college consisting of members of both Houses of Parliament. The election of the Vice President is held by the system of proportional representation by means of the single transferable vote. The voting in this election is held by a secret ballot. Members of the electoral college can vote according to their choice or wish and are not bound by any party whip. The value of every vote cast in the Vice Presidential election has the same value. The electorate for the Vice Presidential election this time is 781 and the majority mark is 391. The voting will begin at 10 a.m. and will continue till 5 p.m. Counting of votes will be held after 6 p.m. onwards. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
Well, the election is necessitated due to the resignation of Jagdeep Dhankar in July this year. Well, Prime Minister Narendra Modi has said that the candidature of C.P. Radhakrishnan has generated immense enthusiasm across the country. In a social media post, Mr. Modi said that the people believe that Mr. Radhakrishnan will be an excellent vice president who will enrich the office with his wisdom and insights.
शगुन, प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। वे दोनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति का आकलन और राहत तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला पहुंचेंगे और वहां राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री मोदी बाढ़ से प्रभावित स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। वे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ और जमीन पर कार्य रहे आपदा मित्र दलों से भी मिलेंगे। श्री मोदी हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हिमाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। वे शाम 4:15 बजे के करीब गुरदासपुर पहुंचेंगे और बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री गुरदासपुर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र दल से मिलेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य दोनों राज्यों में बाढ़ की आपदा में लोगों के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की गहन समीक्षा करना है।
Prime Minister of Mauritius, Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, and his spouse, Veena Ramgoolam, will be on an 8-day visit to India beginning today. This will be the first overseas bilateral visit of Prime Minister Ramgoolam to India in his present term. Prime Minister Ramgoolam had earlier visited India in May 2014 to attend the swearing-in ceremony of Prime Minister Narendra Modi. During his visit to India, Prime Minister Ramgoolam will call on President Draupadi Murmu and hold discussions with Prime Minister Modi to further enhance strategic partnership. Dr. Ramgoolam will also visit Mumbai, Varanasi, Ayodhya and Tirupati. In Mumbai, he would be attending a business event.
नेपाल सरकार ने युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 300 से अधिक घायल हुए। नेपाल के संचार सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद सरकार ने सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध का फैसला वापस ले लिया है। 3 दिन पहले नेपाल सरकार ने फेसबुक और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था क्योंकि ये नेपाल सरकार के साथ पंजीकृत नहीं थे। और अब खेल खबरों के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार बल के पास।
जी जया, खेल खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। CAFA नेशंस कप फुटबॉल में भारत ने तजाकिस्तान के हिलोर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए मैच में ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता। उदंत सिंह के भारत के लिए बराबरी का गोल दागने के बाद निर्धारित समय तक मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। ओमान ने पेनल्टी शूटआउट में अपने पहले 2 मौके गवाए और गुरप्रीत सिंह संधू ने अंतिम पेनल्टी बचाकर भारत को 3-2 से जीत दिलाई। ये पहली बार है जब भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में ओमान को हराया। और जया, अब रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का। 17वां एशिया कप टूर्नामेंट आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहा है। पहले मैच में आज ग्रुप बी में अफगानिस्तान और हांगकांग आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत का पहला मैच कल ग्रुप ए में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है तथा ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग है। भारत का ग्रुप स्तर का आखिरी मुकाबला 19 सितंबर को ओमान से होगा। टूर्नामेंट का सुपर 4 चरण 20 सितंबर से शुरू होगा। दोनों ग्रुप की शीर्ष टीमें 28 सितंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए 3-3 मैच खेलेंगी। इसके अलावा हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करेंगी। सिंधु पहले मैच में डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोन फरसन से भिड़ेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय और आयुष शेट्टी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत हांगकांग ओपन की शुरुआत राउंड से करेंगे। उनका सामना भारत के ही थारुण मन्नेपल्ली से होगा। दूसरी ओर पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। भारत के हरिहरन, अमसा करुणन और रुबन कुमार रेथिना सभापति भी BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स में भाग लेंगे। ध्रुव कपिला, तनिषा क्रेस्टो और रोहन कपूर रुथविका गड्डे मिक्स डबल्स में भाग लेंगे। जी जया, खेलों की दुनिया से बस आज इतना ही।
धन्यवाद मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। सबसे पहले शुरुआत चेन्नई से।
जी जया, वी आर बिगिनिंग विद चेन्नई। वेल, द स्टेट मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन अनबिल महेश हैज सेड that contributions amounting to 800 crore rupees have been received so far through the Nama School Nama Uru Palli scheme. This is aimed at developing infrastructure in government schools. Addressing an event at a government school in Coimbatore, the state minister said that the fund has been received through CSR and it is being utilized in a transparent manner. He said that this has built trust among contributors and more than 400 companies have extended their support towards the development of schools. So this was the update that I had, Jaya, from Chennai. Now over to you for Delhi's updates.
बिल्कुल, राष्ट्रीय राजधानी के समाचारों का रुख करते हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड के जरिए एक नई कौशल संवर्धन योजना शुरू करने जा रही है। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कल इस संबंध में दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिरसा ने बताया कि 50 करोड़ रुपए लागत की इस कौशल संवर्धन योजना 2025-26 के अंतर्गत सरकार 13,900 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग देगी। पाठ्यक्रम में अप्रैल मर्चेंडाइजिंग, लॉजिस्टिक्स वर्क, आईटी हेल्प डेस्क, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलरिंग और खादी फैशन मेकिंग जैसे कौशल शामिल हैं। प्रशिक्षुओं को 5 महीने तक 400 रुपए प्रति महीने मिलेगा, साथ ही ट्रेनिंग के बाद लोन और सर्टिफिकेट की मदद भी मिलेगी। श्री सरसा ने बताया कि यह योजना भारत की सदियों पुरानी भारतीय हैंडलूम तकनीकों को बचाने और युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का काम करेगी। वहीं दिल्ली में सरस आजीविका मेला भी चल रहा है, जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया है। भारत की विविधता को समेटे हुए यह मेला विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति और खानपान को प्रस्तुत कर रहा है। इस वर्ष लखपति दीदी थीम पर आधारित इस मेला ने पूरे देश के स्वयं सहायता समूहों की 400 से अधिक महिला उद्यमियों को एक मंच दिया है। मेले में हस्तशिल्प, हस्तकला और घरेलू उत्पादों के साथ साथ इंडियन फूड कोर्ट भी आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आगंतुकों के लिए प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है और 22 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में आगंतुक सुबह 11 बजे से रात के 9:30 बजे तक जा सकते हैं। वहीं एक और खबर है दिल्ली से कि दिल्ली सरकार इस वर्ष फूल वालों की सैर को भव्य रूप से मनाने जा रही है। इस संबंध में कल दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
दिल्ली सरकार इस वर्ष फूल वालों की सैर को 2 नवंबर से 8 नवंबर तक भव्य रूप से मनाने जा रही है। इस वर्ष फूल वालों की सैर उत्सव के अंतर्गत रंगारंग झांकियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कव्वाली एवं लोक संगीत, ऐतिहासिक झलकियों से सजे कार्यक्रम और पारंपरिक पंखों की झलक देखने को मिलेगी। इस उत्सव में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से कलाकार और समाज सेवी भाग लेंगे। फूल वालों की सैर दिल्ली की गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर फूलों की चादर और पंखे श्रद्धा स्वरूप अर्पित करते हैं। यह आयोजन हमेशा से भाईचारे, सांस्कृतिक एकता और सामूहिक उत्सव का प्रतीक रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
Well, this will actually feature many vibrant processions and cultural performances as well. So Jaya told us about these two particular events. You can go there and have fun. Now we are heading to Bengaluru, listeners. The Maratha Light Infantry Regimental Center in Belgavi carried out a massive Swachhata Abhiyan at Savgaon Lake yesterday. The lake was cleaned of floral dump, immersion residues and plastic waste. Nearly 100 enthusiastic soldiers of the regiment, the local members of Savgaon Panchayat, their families and children joined hands to take up cleaning. So the natural beauty of the lake was restored to make it safe and healthy for the people using the lake. Well, the cleanliness drive conveyed the message that the army is dedicated to safeguard the nation and is also along with that committed to societal well-being. Well, it carried a strong message of environmental awareness and civic responsibility that inspired the local residents to keep their surroundings clean. How wonderful is that? This particular thing that this happened over there in Savgaon Lake, it was cleaned yesterday, so it was a restoration drive.
दुशगुन, अब चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की ओर। मुंबई में ब्रेहन मुंबई नगर पालिका ने विसर्जन के बाद वैज्ञानिक पुनर्चक्रण के लिए लगभग 1,982 मेट्रिक टन प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियां एकत्रित की हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद इस वर्ष पहली बार यह कदम उठाया गया है। नगर निकाय ने मूर्ति विसर्जन के लिए 290 कृत्रिम झीलें बनाई थी, जिसमें से 500 मेट्रिक टन से अधिक पुष्प अर्पण भी एकत्र किए गए हैं, जिन्हें अब खाद में संसाधित किया जा रहा है। पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी पहल है जो अभी की गई है मुंबई में। और वहीं अगर हम बात करें रेलवे की, तो पश्चिमी रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए सप्ताह में 3 दिन तक चलने वाले स्पेशल ट्रेन मुंबई सेंट्रल इंदौर का परिचालन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ट्रेन संख्या 09085 प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 11:20 पर मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1 बजे इंदौर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09086 प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 5 बजे इंदौर से रवाना होगी और अगली सुबह मुंबई पहुंचेगी। रास्ते में यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, दाहोद, रतलाम और उज्जैन में रुकेगी। बुकिंग आज से शुरू हो रही है।
Yes, now Jaya, we are heading to Hyderabad. Telangana Chief Minister A. Rewant Reddy has laid foundation stones for phases 2 and 3 of Godavari drinking water supply project at Gandipet near Hyderabad yesterday. The projects are expected to address Hyderabad's growing water needs and ensure environmental restoration. Speaking on the occasion, Mr. Reddy clarified that the water is being brought from the Shripad Yelampally project. He said plans are underway to divert 20 TMC or 1,000 million cubic feet of Godavari water, with 16 TMC, the 1,000 million cubic feet allocated for Hyderabad's drinking water needs, and 4,000 million cubic feet dedicated to rejuvenating water bodies and the Musi River. So these were the Metro City updates, listeners.
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और शगुन के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। दिल्ली में गरज के साथ वर्षा के आसार हैं। राजधानी में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि दिल्ली वासियों को आज भी उमस का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मुंबई में आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा का भी अनुमान है। शहर में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रह सकते हैं और आज का तापमान न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम के साथ हैं शगुन।
Yes, dear, of course, we'll again begin with Chennai. It is expected to have a partly cloudy sky and there is a possibility of moderate rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky again with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees, listeners. Hyderabad, if I talk about Hyderabad, it is also expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature, it will hover between minimum of 23 degrees and maximum of 32 degrees Celsius, listeners.
और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के उस पर उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 9 सितंबर 2025 है और आज ही के दिन
जी, टुडे जया, इट्स इंटरनेशनल सुडोकू डे। वेल, सितंबर 9th, दिस पर्टिकुलर डे इज डेडिकेटेड टू प्रमोट द पॉपुलर लॉजिक बेस्ड नंबर प्लेसमेंट पजल व्हिच इज Sudoku. Well, the date was chosen by the World Puzzle Federation in the year 2013, and this was particularly done to symbolize the game's 9x9 grid, encouraging people of all ages to engage in the mentally stimulating activity, and this actually promotes the cognitive benefits like improved concentration and logical thinking. So, please play Sudoku today.
श्रोताओं से हम कहेंगे कि आप भी अपने दोस्तों और परिवारों के साथ सुडोकु खेलने की चुनौती दे सकते हैं।
Yeah, it's in all the newspapers, right?
बिल्कुल। तो अब हम बात कर रहे हैं आज के इतिहास के बारे में। तो आज ही के दिन 1776 में अमरीकी संसद ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम यूनाइटेड कॉलोनीज से बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका किया था। और 1920 में अलीगढ़ को एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया था।
In the year 1991, amidst the disintegration of the Soviet Union, Tajikistan declared its independence on this day. In the year I was telling you about, the year 1991, this marked a pivotal moment in Central Asian history as the nation, which had been part of the Russian Empire since the late 19th century and a Soviet Republic since 1929, embarked on its journey as a sovereign state. Now, in the year 2015, Elizabeth II became the longest reigning monarch in British history, surpassing Victoria's record reign of 63 years and 216 days.
और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध पत्रकार तथा हिंदी समाचार के समूह संस्थापक लाल जगत नारायण को। वो कांग्रेस और आर्य समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। लाल जगत नारायण छुआछूत के विरोधी और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले इस बात के समर्थक थे। 80 के दशक में जब पूरा पंजाब आतंकी माहौल से सुलग रहा था, उस दौर में भी कलम के सिपाही और देश भावना से प्रेरित लाला जी ने अपने बिंदास लेखन से आतंकियों के मंसूबों को उजागर किया और राज्य में शांति कायम करने का भरसक प्रयास किया।
Well, listeners, today we're also remembering James Earl Jones, the actor, well, a pioneer in the entertainment industry. He is known for his extensive and acclaimed roles on stage as well as on screen. Well, he's one of the few performers, listeners, to achieve Emmy, Grammy, Oscar and Tony Award, both of which are very important, and he's been honored with all these awards. He was inducted into the American Theatre Hall of Fame in the year 1985 and also honored with the National Medal of Arts in the year 1992. Also, the Screen Actors Guild Achievement Award in 2009. So, his contribution is huge. He made his Broadway debut in the play Sunrise at Campo Bello. This was in the year 1957 and then gained fame starring in several productions with Shakespeare in the Park, including the Hamlet and King Lear. Well, he has been awarded other awards as well, one of which I would like to name again, Academy Honorary Award. This was in the year 2011. I was talking about James Earl Jones.
आज पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार की, रामवृक्ष बेनीपुरी की। ये एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार और संपादक के रूप में भी अविस्मरणीय हैं। बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए। हिंदी साहित्य के पत्रकार होने के साथ ही इन्होंने कई समाचार पत्रों जैसे युवक आदि भी निकाले। इसके अलावा कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में भी संलग्न रहे।
Well, listeners, today we are also remembering Otis Ray Redding Jr., singer and songwriter. Today it's his birth anniversary, and he is regarded as one of the greatest singers in the history of the popular music and a seminal artist in soul music and rhythm and blues. Well, he has been nicknamed as the King of Soul. His style of singing drew inspiration from the gospel music that preceded the genre. His vocal style influenced many other soul artists in the year 1960s. He received many posthumous accolades, including 2 Grammy Awards, the Grammy Lifetime Achievement Award, and also he was inducted in the Rock and Roll Hall of Fame. And I have chosen a song by him for you to listen in and enjoy his tender voice and his absolutely amazing vocals. Let's listen to Otis Ray Redding.
I want security, yeah. With that, I got a great loss. Oh, now. Security, yeah. And I want it at any cost. Oh, now. Don't want no money. Right now, 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 now. I don't want no pain. But security, I have all of
श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन की। भारत को दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए श्वेत क्रांति लाने वाले वर्गीज कुरियन को देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखने का श्रेय दिया जाता है। भारत सरकार ने वर्गीज कुरियन को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्होंने सामुदायिक नेतृत्व के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार, कार्नेगी वॉटलर विश्व शांति पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार, कृषि रत्न और अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से भी नवाजा गया। इसके अतिरिक्त मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। और इसी के साथ आज पुण्यतिथि है असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक जोगेश दास की। उनके द्वारा रचित एक कहानी संग्रह पृथ्वीवीर असुक के लिए उन्हें सन 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
Well, today, listeners, we are also remembering a huge name, one of the most influential authors of all time, Leo Tolstoy. Well, he has achieved acclaim in his, he actually has achieved acclaim in his 20s with his semi-autobiographical trilogy, Childhood, Boyhood and Youth. And also, he has, based on his experiences in the Crimean War, he wrote Sevastopol Sketches and his War and Peace. This was based on his youthful sins and are often, they are cited as pinnacles of realist fiction and three of the greatest novels that were ever written. Well, his oeuvre includes short stories such as Alyosha the Pot and After the Ball, and novels such as Family Happiness, the death of Ivan Illich, and the Kreutzer Sonata, also The Devil. And he also wrote plays and essays concerning philosophical, moral and religious themes. He received praise from countless authors and critics, both during his lifetime and even after that. Well, Virginia Woolf, another acclaimed author, she called Tolstoy, well, the greatest of all the novelists.
आज हम याद कर रहे हैं भारत के सैनिक कैप्टन विक्रम बत्रा को, जिन्होंने करगिल युद्ध के समय देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी. इन्हें सन 1999 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वर्ष 2021 में बनी हिंदी फिल्म शेरशाह इनकी जीवनी पर ही बनी.
वे मैथों तेरा मन परया, मन परया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना.
Well, yes, we are paying our tribute to the Indian Army officer, Captain Vikram Batra. Well, as she was telling us, posthumously awarded the Paramveer Chakra and for his actions, particularly during the Kargil War. He displayed most conspicuous courage and valor in the face of enemy and achieved a near impossible mission. So our tributes to the brave heart.
We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, OAIA, and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after that, another bunker was captured. My company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. They were on the same frequency which were we on our radio sets. And one of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me, my code name was Sher Shah. Oh, Sher Shah, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge, and my guys, they went wild.
Well, we salute the brave heart for his courage and valor.
और श्रोताओं, हम याद कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को. आज उनकी जयंती है. भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के प्रथम रचयिता थे और भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे. उत्तर प्रदेश के काशी नगरी में जन्मे भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. आज ही जयंती है भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब रमजान खान की. हिंदी सिनेमा जगत के युग पुरुष महबूब खान को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने दर्शकों को लगभग 3 दशक तक क्लासिक फिल्मों का तोहफा दिया. महबूब खान ने अपने सिने करियर की शुरुआत 1927 में प्रदर्शित फिल्म अलीबाबा एंड 40 थीव्स के से अभिनेता के रूप में की थी. इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं.
ऐ सबा उनसे कह जरा क्यों हमें बेकरार कर दिया, ऐ सबा उनसे कह जरा क्यों हमें.
बहुत कम लोगों को पता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के लिए महबूब खान को अभिनेता के रूप में चुना गया था.
Wonderful.
और वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया महबूब खान की सबसे अधिक सफल फिल्मों में शुमार की जाती थी. सुनते हैं इसका गीत.
दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा. दुनिया में हम...
well, Well, we are also talking about now, we are about to do it. Well, I am talking about musician David Alan Stewart, singer, songwriter and a record producer. Well, he was inducted into the Songwriters Hall of Fame in 2020 and then inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. Let's listen to one of his creations now, listeners.
I bought you a record in New York City, Discorama down on Union Square.
आज जन्मदिन है बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार का. अक्षय दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार ले चुके हैं, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. अक्षय को फिल्म रुस्तम में उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था और इस फिल्म के गाने को भी लोगों ने खूब सराहा. समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और शगुन को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का.
थैंक यू सो मच.